તારીખ 21-2-1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 569 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 470.
નિવેદન કરતે હુએ લિખતે હૈ કે હમ જિસ ઉપાધિ કાર્ય મેં વ્યવસાય મેં રહે હૈ उसमें से छूटने के परिणाम बहुत होते हैं, फिर भी छूटा नहीं जाता। काफ़ी समय बीत गया, लगता है कि यही हमारा शिथिलपना है। यहाँ एक विशेष स्पष्टीकरण आवश्यक है। कोई भी भूमिका का साधक हो, चतुर्थ गुण स्थान वाला हो, पंचम गुण स्थान वाला हो, छठा सातवां गुण स्थान वाला हो, कोई भी साधक हो, उनको अपनी दशा से शीघ्र आगे बढ़ना है। पूर्णता का लक्ष्य तो पहले से ही है, तो आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी कहेंगे कि हमारी शिथिलता है। पुरुषार्थ अच्छा चलता हो, अध्यात्म दशा बलवान हो, तो भी खुद को ऐसा लगेगा कि हमारी शिथिलता है। जब ये महापुरुष अपने शिथिलता को लिखता है तो मुमुक्षु को इस बात को किस तरह से समझना चाहिए, यह एक आवश्यक स्पष्टीकरण का विषय है। 452 पत्रांक 569। मुमुक्षु को इस महापुरुष की शिथिलता का अवगुण को देखना नहीं चाहिए। वो भले ही कहें, लेकिन हमें इनके अवगुण को नहीं देखना है। हमारी भूमिका इनके अवगुण को देखने की नहीं है, हमारी भूमिका इनके सद्गुण को देखने की होनी चाहिए। नहीं देख सके तो देखने की योग्यता प्राप्त कर लेनी चाहिए, किंतु हमें इनके अवगुण को नहीं देखना चाहिए। वो आगे बढ़ने के लिए कुछ भी लिखे, अधिक पुरुषार्थ तीव्र करने के लिए वो कुछ भी लिखे, लेकिन हमारे से वो उतने आगे हैं कि हम इनके अवगुण देखने लायक नहीं हैं। इसलिए ऐसी बात कहीं भी सरलता से नम्रता से वो लिखें तो इसका हमें फायदा इस तरह से उठाना चाहिए कि जब ये इतनी महानता होने पर भी अपनी शिथिलता को गिनते हैं तो फिर हमारी परिस्थिति क्या समझनी चाहिए। हमको तो बहुत बहुत आवश्यक है पुरुषार्थ बढ़ाने की। इस तरह से अपने पुरुषार्थ को बढ़ाने में इस बात को समझना चाहिए। अगर इसकी महापुरुष की भी शिथिलता हमारी नज़र में आई तो हमको बहुत नुकसान हो जाएगा। हमारी इनके प्रति जो परम भक्ति होनी चाहिए, उस भक्ति में क्षति पहुंचेगी, शायद अभक्ति भी हो जाएगी और दर्शन मोह का आवरण और बढ़ जाएगा। है तो सही और बढ़ जाएगा। और वो आगे बढ़ने के लिए कथानुयोग के दो पात्र के दृष्टांत देते हैं कि देखिए, जनक विदेही राजकाज में रहते हुए भी आत्म स्वभाव में निवास करते थे, जानते हैं, हम भी व्यवसाय आदि करते हुए आत्म स्वभाव में निवास तो करते हैं, हमारे स्वभाव का निवास हमने छोड़ा तो नहीं है, परंतु हमें ऐसा अवलंबन लेकर के हमारे पुरुषार्थ की शिथिलता को और नहीं बढ़ाना है। ऐसा अवलंबन लेंगे तो हमारी शिथिलता बढ़ेगी, और मुमुक्षु भी अगर ऐसी कोई गलती करता है और ज्ञानी का दृष्टांत लेता है तो उनको तो बहुत बहुत नुकसान होता है, क्योंकि ज्ञानी के पास तो ज्ञान परिणति ज्ञान धारा है, मुमुक्षु के पास तो कुछ पूंजी ही नहीं है, उनके पास तो कुछ शक्ति नहीं है, उनको तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने एक दूसरे पात्र तीर्थंकर देव का दृष्टांत लिया आगे बढ़ने के लिए, कि वे बहुत समर्थ पुरुष थे। जो तीर्थंकर देव थे वो तो बहुत समर्थ पुरुष थे, इनके जीवन आजन्म त्यागी जैसा था, जन्म से ही त्यागी जैसा तो इनका जीवन था, फिर भी उन्होंने क्यों त्याग कर दिया, उन्होंने क्यों बाह्य प्रवृत्ति सांसारिक प्रवृत्ति को छोड़ दिया, हमें इसका आधार लेना है, और वो भी हमारे पुरुषार्थ के बल पर हमें त्याग करना है। यहां केवल बाह्य त्याग का विषय नहीं है, ऐसे तो बहुत करते हैं, अज्ञानी भी कर देते हैं त्याग, दीक्षा ले लेते हैं, जंगल में चले जाते हैं, वो त्याग की बात नहीं है। जिस त्याग के कारण से उस प्रकार के विकल्प का अभाव हो जाए, मोक्ष मार्ग में त्याग, सच्चा त्याग, यथार्थ त्याग कब बनता है, कि वीतरागता जितनी बढ़ती है पुरुषार्थ के कारण से, उतना राग का अभाव होता है, राग मंद होता है, ये बात यहां नहीं है। जो सम्यक पुरुषार्थ के बिना बाह्य त्याग करते हैं वो कषाय की मंदता करते हैं, उसका कषाय मंद होता है, लेकिन ज्ञानी हैं, मोक्ष मार्ग में विचरने वाले हैं, उनके जो त्याग होता है वो राग का अभाव पूर्वक होता है, राग की मंदता पूर्वक नहीं होता है, बहुत फर्क है। जिस जिस प्रकार का राग वीतरागता के सद्भाव के कारण अभाव को प्राप्त हुआ, एक का सद्भाव में दूसरे का अभाव है, वीतरागता के सद्भाव में राग का अभाव है, यह सम्यक है, यथार्थ है, और इस कारण से इस प्रकार के विकल्प उत्पन्न नहीं होते, वो राग को दबाते नहीं, वो राग को दबाते नहीं कि राग को दबा करके त्याग करो, इस प्रकार का त्याग वो नहीं करते। तो इस तरह से जब तीर्थंकर जैसे आजन्म त्यागी थे, गृहस्थी होते हुए भी वो त्यागी गिने जाते थे, ऐसे इनकी अंतर परिणति थी, फिर भी इतना पुरुषार्थ बढ़ाया, इतना पुरुषार्थ बढ़ गया कि फिर विकल्प ही नहीं आए, सर्वसंग परित्याग किया तो किसी के संग का भी विकल्प नहीं आया उनको। ये जिनकल्पी मुनि होते हैं, स्थविरकल्पी नहीं होते हैं, तीर्थंकर मुनि होते हैं तो जिनकल्पी होते हैं, अकेले रहते हैं, दूसरे मुनि का उनको संग नहीं रहता, वो संग में रहते नहीं, और आचार्य आदि गुरु तो इनके पर होते नहीं, वो स्वयं जगत गुरु होने से वो स्वयं दीक्षा को धारण कर लेते हैं, उनको गुरु की आवश्यकता नहीं होती, वही वो स्वयं ही गुरु तत्व है, जगत गुरु होने वाले हैं अरिहंत दशा में। तो फिर तीर्थंकर देव के मार्ग में हम चलने वाले हैं, क्या सोचते हैं कि हम भी ऐसे साधक हैं जो तीर्थंकर देव के मार्ग में चलने वाले हैं, तो हमें भी ऐसा ही पुरुषार्थ चाहिए, हमारा भी विकल्प उत्पन्न नहीं हो, ऐसी वितरागता हमारी बढ़ जाए, यही हमारी अभिलाषा है। और ऐसा नहीं होगा और अधिक काल व्यतीत होगा, खुद को पामर गिनते हैं वहां, लेकिन मुमुक्षु को पामरता को नहीं देखना है। वो भले ही कुछ लिखे, पामरता लिखे, वो तो गणधरदेव भी लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे क्या, जो छठे सातवें गुणस्थान की उत्कृष्ट दशा में है और वही भाव में निर्वाण पद को प्राप्त होने वाले होते हैं। गणधरदेव को वो चरम शरीर है, वो उसी भाव में जाते हैं, वो भी लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, अपनी दशा लिखेंगे कि क्या सर्वज्ञ तीर्थंकर परमात्मा की दशा और कहां इस पामर जीव की दशा, ऐसे लिखेंगे। लेकिन नीचे वाले को थोड़ी सावधानी से इस बात को समझना है, नीचे वाला इस पामरता को वाकई ही अपने साथ कंपैरिजन कर लेगा, बराबरी कर लेगा, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कहते हैं कि वो जितनी जितना समय जाता है उतना हमें नुकसान है, नुकसान में मुनाफा नहीं और मुनाफा में नुकसान नहीं। ऐसा भय जीव के उपयोग के प्रति प्रवर्तित होता है और यही कर्तव्य है, ऐसा सहज होना चाहिए। सभी साधक को ऐसा होता है और हमको भी ऐसा होता है और ऐसा होना ही चाहिए सहज रूप से। सहज रूप का मतलब कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए। अब आगे कहते हैं, यहां तक कल चला था स्वाध्याय, जो राग द्वेषादि परिणाम अज्ञान बिना संभवता नहीं है, वैसे राग द्वेषादि परिणाम होने पर भी जीवन मुक्तपना सर्वथा मान करके जीवन मुक्त दशा की जीव असाधना करता है, ऐसा हमको वर्तता है। क्या कि अज्ञान पूर्वक के राग द्वेष की जाति अलग होती है और ज्ञान दशा के बाद होने वाले राग द्वेष की जाति अलग होती है, पूरी जाति बदल जाती है। बंध के पांच कारण शास्त्र में कहे हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, बंध है तबह, वो बंध के पांच कारण हैं। उसमें मिथ्यात्व चला जाता है और साधक अविरति गुणस्थान को प्राप्त करता है तो इनकी अविरति, उनका प्रमाद, उनका कषाय और इनका योग, ये चारों की जाति बदल जाती है। चार रेख है बंध के कारण, लेकिन चारों की जाति बदल जाती है, योग की भी जाति बदल जाती है, और तीनों की तो बदली ही बदली, लेकिन योग की मन वचन काया के योग की जाति भी बदल जाती है, योगास्त्र भी उनका दूसरी तरह से होता है। तो ऐसा नहीं हुआ जिसको, और फिर भी कोई जीव निश्चयाभासी होकर के ऐसा मानता है कि हम तो मुक्त हो गए हैं, हम तो सर्वथा मुक्त है, हमारे त्रिकाली स्वरूप को कुछ छुआ ही नहीं, हम तो वैसे के वैसे हैं, और राग द्वेष जो अज्ञान दशा में था वो भी वैसा का वैसा, तो ये तो जीवन मुक्त दशा जिन केवल ज्ञानियों ने पाई है या ज्ञानियों ने पाई है उनकी असाधना है, अवमानना है, ऐसे साधक होते नहीं है। ऐसा वर्तता है हमको, इसलिए सर्वथा राग द्वेष परिणाम का परीक्षण पना ही कर्तव्य है, इसलिए राग द्वेष सर्वथा क्षय हो जाए यही हमको तो कर्तव्य लगता है। जो भी रहा है वो हमको पुसाता नहीं है, वो भी हमको शीघ्र मिटाने का अभिप्राय बताता है। और पुरुषार्थ हमारे अभिप्राय के अनुकूल चलना ही चाहिए, शीघ्र चलना चाहिए, ऐसा एक इसमें अंतर्ध्वनि है। अब कुछ सिद्धांतिक बात का निरूपण इस पत्र में आया है, ये बहुत सुंदर आया है। लिखते हैं कि अत्यंत ज्ञान होता है वहां अत्यंत त्याग संभवित है। जहां अत्यंत ज्ञान होता है, अत्यंत मैंने परिपूर्ण, जहां पूर्ण ज्ञान होता है वहां अत्यंत त्याग संभवता है। ज्ञान की पूर्णता हो जाए और त्याग अधूरा रह जाए ऐसा कभी बनता नहीं। जैसे कि तीर्थंकर देव को या तेरहवें गुण स्थान वाले केवली भगवान को अत्यंत मैंने पूर्ण ज्ञान वर्तता है, तो उनको कुछ भी परिग्रह रहे ये बात बन सकती नहीं। स्पष्ट लिखा है क्यों कि चारित्र गुण बारहवें गुण स्थान में पूर्ण होता है। यदि चारित्र गुण अधूरा रहता हो तो कुछ अत्याग दशा का संभव हो सकता है, लेकिन मोक्ष मार्ग में जो गुणों की पूर्णता होती है उसमें चारित्र गुण और ज्ञान गुण दोनों की पूर्णता का गुण स्थान अलग अलग है। चारित्र गुण की पूर्णता बारहवें गुण स्थान में होती है और केवल ज्ञान की पूर्णता तेरहवें गुण स्थान में होती है। तो जिसको पूर्ण ज्ञान हो गया उसका चारित्र तो पहले पूर्ण हो चुका है, और परिपूर्ण चारित्र हो वहां अंतर बाह्य परिपूर्ण त्याग हो ऐसी ही दशा होनी चाहिए। इसलिए केवली भगवान को कोई किंचित मात्र परिग्रह स्थापित करे तो उनको केवल ज्ञान दशा का और बारहवें गुण स्थान का भी कोई व्यवहारिक तौर से भी समझ नहीं है। अनुभव दशा से समझ आनी तो दूसरी बात है, बौद्धिक स्तर पर भी समझ नहीं है, क्योंकि बारहवां गुण स्थान का नाम ही यथाख्यात चारित्र है। जैसे हमारे अनादि नमस्कार मूल मंत्र है वो अनादि से वैसा का है वैसा है, इसमें कोई फेरफार नहीं है। किसी काल में वो मूल मंत्र के एक मात्रा में भी फेरफार नहीं है, एक शब्द में भी फेरफार नहीं है, वैसे चौदह गुण स्थान के नाम में अनादि से ऐसे ही है। कुछ काल में ऐसा यथाख्यात चारित्र नाम बारहवां गुण स्थान का नहीं था वो बात नहीं है। तो यथाख्यात चारित्र वहां हो जाता है, मैंने चारित्र यथा मैंने जैसा गुण है वैसा परिपूर्ण प्रकट हो जाता है, तो वहां कोई भी अचारित्र का अंतर बाह्य प्रकार नहीं रहता, परिग्रह की कोई बात वहां नहीं रहती। फिर भी जैन दर्शन में विचार भेद से केवली भगवान को भी परिग्रह संयुक्त देखने में दर्शन करने की पद्धति चल रही है, तो वो बात तो ज्ञानी के अभिप्राय के साथ मेल खाती नहीं है। अत्यंत ज्ञान होता है वहां अत्यंत त्याग संभवित होता है, और अत्यंत त्याग प्रकट हुए बिना अत्यंत ज्ञान नहीं होता, ऐसा श्री तीर्थंकर ने स्वीकार किया है। ये मेरे घर की बात नहीं है, पहले अत्यंत त्याग प्रकट हुए बिना किसी को अत्यंत मैंने पूर्ण ज्ञान होता ही नहीं। पूर्ण त्याग हुए बिना पूर्ण त्याग पूर्ण ज्ञान हो ऐसा कभी बन सकता नहीं, ऐसा तीर्थंकर देव ने अपने अनुभव से अपने चरित्र से और अपने केवल ज्ञान से स्थापित किया है। उसमें फेरफार स्वीकार करना वो तीर्थंकर देव की आज्ञा पे पैर रखकर चलना बराबर है, ऐसा कभी होना चाहिए नहीं। अब त्याग के विषय में कहाँ से तात्विक रूप से प्रारंभ होता है, ऐसी एक दूसरी बात करते हैं। जब त्याग का प्रकरण चला तो बाह्य त्याग को त्याग तो सर्वसाधारण जनता भी समझती है, लेकिन त्याग के विषय में एक तात्विक बात है, यह बात मूल में जो है वो नहीं समझे तो बाह्य त्याग का जो प्रकरण है उसमें मूल बात रह जाएगी। आत्म परिणाम से जितना अन्य पदार्थ का तादात्म अध्यास का निवर्तना नाश होना, उसको सृजीन त्याग कहते हैं। त्याग का प्रारंभ कहाँ से होता है कि आत्म परिणाम से अन्य पदार्थ का तदात्म अध्यास छूट जाना। तदात्म अध्यास माने क्या कि अध्यासित भाव से अपनापन होना, अपनापन लगना, अपनापन का अनुभव होना। जैसे कि ये शरीर को हम अपना अनुभव करते हैं कि मेरा शरीर है, ये देहाध्यास है, उसको क्या कहते हैं, शरीर को आत्मा रूप मान लिया, अपना रूप मान लिया तो उसको अध्यास कहते हैं, और देह का अपनापन मानना उसको देहाध्यास कहते हैं। तो आत्म परिणाम से जितना भी अन्य पदार्थ का अध्यास मिट जाना, यहाँ से त्याग की शुरुआत होती है। इसलिए चतुर्थ गुणस्थान वर्ती ज्ञानी पुरुष अविरत सम्यक दृष्टि होने पर भी उनको अन्य पदार्थ का तदात्म अध्यास छूट गया है तो उनको त्याग वर्तता है ऐसा कहने में आता है। जिनदेव ने वो त्याग को बताया है ऐसा कहते हैं। तो अत्यागी को भी त्यागी कैसे मानना और त्यागी को भी अत्यागी कैसे मानना, ये एक समझने लायक विचारणीय प्रश्न है कि जिसको तदात्म अध्यास नहीं छूटा हो, अन्य पदार्थों से भिन्नपना अपना अनुभव में नहीं आया हो और अभिन्न अनुभव अध्यासित अनुभव चालू रहा हो, वो सर्वसंग परित्याग करके दीक्षा लेकर के जंगल में जाता है तो भगवान कहते हैं कि वो ज्ञानी है ही नहीं, वो त्यागी है ही नहीं, उनको त्यागी नहीं गिनते हैं। और चतुर्थ गुणस्थान में कुछ त्याग नहीं किया हो लेकिन तदात्म अध्यास का मिट गया है तो उनको त्यागी कहते हैं भगवान, ऐसी बात होती है। वो बात लिया है कुंदकुंदाचार्य देव ने अष्ट पावड़ में, असंजनम न वंदे ही, असंयमी को बंधन मत करना। तो लोग कैसे लेते हैं कि जिसने बाह्य त्याग नहीं किया हो उसको बंधन मत करना, ऐसी बात नहीं है। वहाँ असंयमी में दो बात लिया है, एक तो जो त्यागी होते हैं फिर भी अध्यास नहीं छूटा है वो असंयमी है, और अध्यास नहीं छूटा है और त्याग नहीं किया है वो तो असंयमी है ही। लेकिन ज्ञानी को वहां असंयमी नहीं बताया है, वो भी गाथा आगे रख दी है उन्होंने कि कोई गलती नहीं करे। तो संयमी को असंयमी क्यों कहा कि देहात्म अध्यास या पर पदार्थ में आत्म परिणाम का जो अध्यास है वो नहीं छूटा है, इसलिए जिसको अध्यास छूट गया उसको सृजीन त्याग कहते हैं, उन्होंने त्याग कर दिया। अध्यास का त्याग वही सच्चा त्याग है, और यहाँ से ये त्याग की भूमिका चालू होती है, वहाँ से त्याग गिना जाता है और फिर आगे का जितना भी पंचम गुणस्थान का त्याग है, छठे सातवें गुणस्थान का त्याग है वो फिर बाद में गिना जाता है और बाद में वो आगे बढ़ करके होता है। अध्यास मैंने एकत्व बुद्धि, देह में एकत्व बुद्धि, विकल्प में एकत्व बुद्धि, राग में एकत्व बुद्धि, संयोग में एकत्व बुद्धि, परिवार में एकत्व बुद्धि, वो सब अध्यास है। तद मैंने वाह, हिंदी में वाह कहते हैं, गुजराती में अपने ते कहे छे, तद आत्मा तेने ते होवा छता हूँ नहीं, ते छे थर्ड पर्सन छे, हूँ फर्स्ट पर्सन छु, ते होवा छता एमा आत्मा आत्मा पण अनुभव में आवो, अध्यास एटले अनुभव में आवो, शरीर में पोतापणानो अनुभव थवो, कुटुंब परिवार मारा छे एवो अनुभव थवो, मकान कपड़ा दागिना आबरू कीर्ति मारी छे एवो अनुभव थवो। आबरू कीर्ति कोई आम कपड़ा जेम वस्तु नथी, दागिना जेम वस्तु नथी, पण ए बहु मोटी वस्तु थई पड़े छे, એ બહુ મોટી વસ્તુ થઈ પડે છે, એમાં પણ આ મારી આટલી લોકમાં સમાજમાં આબરૂ છે, એ અધ્યાસ છે જીવનો, એ પર પદાર્થમાં આત્મબુદ્ધિ છે, આત્માનો અનુભવ છે, એ અધ્યાસ છે। તો અધ્યાસ હોતા હૈ વહાં તક અજ્ઞાન હૈ, પર અધ્યાસ હોતા હૈ વહાં તક મિથ્યા દર્શન હૈ, મિથ્યાત્વ હૈ। उसका त्याग होने से अनंत संसार टूट जाता है, और वही सच्चा त्याग का मूल यही है। यहाँ से त्याग की, सच्चा त्याग की भूमिका आगे चालू हो जाएगी। ऐसा अध्यास का त्याग नहीं होगा, इसका सभी प्रकार का बाह्य त्याग वृथा है, बेकार है, इसका कोई मूल्य मोक्ष के मार्ग में नहीं है। मोक्ष मार्ग में अध्यास के त्याग बिना जो भी त्याग है इसका कोई मूल्य ही नहीं है, उसको असंयमी कहते हैं। यह तदात्म अध्यास की निवृत्ति रूप त्याग होने के लिए यह बाह्य प्रसंग का त्याग भी उपकारी है, कार्यकारी है। कब, कैसे, कि तदात्म अध्यास की निवृत्ति रूप त्याग होने के लिए कोई त्याग करता है तो वो ठीक है, क्योंकि इसका हेतु, इसमें उसका जो मोटिव है वो सच्चा है, तो उस त्याग को आदर करेंगे कि ठीक है, वो अध्यास छोड़ने के लिए त्याग करता है। जैसे रस परित्याग करने के लिए रस को छोड़ना अच्छा है, लेकिन रस रख करके रस को छोड़ना अच्छा नहीं है। तो ये प्रयोग कर सकते हैं, त्याग का प्रयोग क्यों करना, त्याग करने के लिए नहीं, अध्यास छोड़ने के लिए त्याग का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये प्रयोग उपकारी होता है, कार्यकारी होता है। बाह्य प्रसंग के त्याग के अर्थ अंतर त्याग कहा नहीं है, अंतर त्याग का उपदेश दिया है कि तदात्म अध्यास का त्याग करो, तो बाह्य प्रसंग का त्याग के कारण से नहीं कहा है, ये तो मूल में भिन्नत्व करने के लिए, पर पदार्थ से भिन्नत्व करने के लिए कहा है। ऐसा है सिद्धांत, तो ऐसा है, फिर भी इस जीव को अंतर त्याग के अर्थ, अंतर त्याग के हेतु से बाह्य प्रसंग की निवृत्ति को किसी भी प्रकार उपकारी मानना योग्य है, किसी भी प्रकार मैंने प्रयोग के कारण से उपकारी मानना योग्य है। प्रयोग करने में उसका इसमें अंतर प्रयोग साथ साथ चलना चाहिए। जैसे कि कृपाल देव व्यवसाय में थे, वो व्यवसाय छोड़ना चाहते हैं, तो छोड़ना चाहते हैं तो साथ साथ भीतर में त्याग का, वितरागता का पुरुषार्थ साथ में है। वितरागता का पुरुषार्थ होनी होवे नहीं और बाहर में त्याग कर दे तो वो उचित नहीं है। ज्ञानी को, मुमुक्षु को अध्यास है, वो अध्यास छोड़ने के लिए कोई त्याग करे तो ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं होता, अध्यास तो रहता ही है, कोई त्याग कर देता है तो अध्यास नहीं छोड़ जाता है।
त्याग करने से कोई अध्यास नहीं छोड़ता है, लेकिन अध्यास छोड़ने के लिए त्याग करे तो त्याग के पीछे जो हेतु है, मोटिव है, उसको गिन करके उसको उपकारी मानना, कार्यकारी मानना ठीक है। मैंने कंडीशनल बात है, वो बात शर्ताधीन है, ऐसे ही सीधा त्यागने की बात नहीं है। इसलिए लिखा कि बाह्य प्रसंग के त्याग के कारण से अंतर त्याग नहीं कहा है। ऐसा सिद्धांत है कि इसका त्याग हो जाएगा तो अंतर त्याग हो जाएगा, वो बात नहीं है। मतलब क्या है, कुछ लोग ऐसे समझते हैं अज्ञान भाव से कि हम त्याग कर देंगे ना तो हमारा रस भी टूट जाएगा, हम चीज छोड़ेंगे ना तो हमारा रस छूट जाएगा। तो कि ऐसा नहीं है, ऐसा सिद्धांत नहीं है कि जो वस्तु को छोड़े तो वस्तु का रस छूटता है। लेकिन जिसका हेतु ऐसा हो त्याग करने के कारण समय में कि हमको हमारा रस छोड़ना है इसलिए हम त्याग करते हैं, तो वो त्याग की भूमिका में प्रयोग करेगा, अपने परिणाम का अवलोकन करेगा और अध्यास छोड़ने का प्रयास पुरुषार्थ करेगा। तो पुरुषार्थ के साथ बाह्य निमित्त को सहकारी कारण बना ले तो वो उचित है, उतनी सी बात है। इस विषय में बहुत सी गलतफहमियां संप्रदाय में चलती है, क्यों कि बाह्य त्याग करना आसान है, अध्यास का त्याग करना उतना आसान नहीं है, तो वो तो कोई भी कर लेता है। जैसे उपवास कर लेते हैं हम लोग, लेकिन हमारे प्रिय चीज के, खाने की प्रिय चीज के प्रति रस मिटा के नहीं मिटा, इसका कोई ख्याल करते नहीं है। तो उपवास के पहले हमारी दशा बहुत बिगड़ी हुई रहती है कि ज्यादा से ज्यादा खा लो, क्योंकि फिर भूखा रहना है। और उपवास के बाद पारणा करते हैं तो उसमें भी हमारी परिस्थिति बिगड़ जाती है, क्योंकि हमने खाया नहीं था तो भी। और रोज जो खाते हैं इसे, हमेशा खाते हैं इसे, दूसरे दूसरे आइटम बना करके खाने लग जाएंगे या ज्यादा खा लेंगे, तो उसमें अंतर त्याग का कोई हेतु ही नहीं है और उसमें कोई अध्यास का त्याग होने का कोई अवसर भी नहीं आएगा। जिसको अध्यास का त्याग करना है ऐसा हेतु रहा है, वो कोई प्रयोग करे तो उसको प्रयोग करना ठीक बताया है, वो प्रयोग करे तो अच्छी बात है, प्रयोग के दौरान वो अध्यास का त्याग करता है तो हम उसको उचित मानेंगे, उतनी सी बात है। अगर सुख बुद्धि है तो तीव्र हो ही जाता है, हाँ, सुख बुद्धि तोड़ना, अवलोकन करके सुख बुद्धि को तोड़ना वो करना चाहिए, होना चाहिए, वो भी करना चाहिए, और फिर उसको छोड़ करके देखना चाहिए, सब प्रकार के प्रयोग करना चाहिए। लेकिन इस दोनों में जो हेतु है वो नहीं बदलता है, प्रयोग बदलता है, प्रयोग का हेतु नहीं बदलता है, तो प्रयोग सफल होता है किसी भी प्रकार से किया जाए। फिर अपनी दशा लिखते हैं, कुछ सिद्धांत का प्रतिपादन कर करके फिर अपनी दशा को लिख रहे हैं कि नित्य छूटने का विचार करते हैं, हमको ये व्यवसाय से छूटने का विचार हमेशा हमेशा आता रहता है और यह कार्य, जैसे यह कार्य शीघ्र निपटे, पूरा हो जाए, वैसा जाप जपते हैं, स्मरण करते हैं, नहीं वही तो अंदर में जाप चलता है हमारा, तो कैसे छूटे, कैसे छूटे। मतलब जितना भी व्यवसाय के परिणाम थे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, रस तो नहीं आता था लेकिन निरस रूप से होने वाले परिणाम को भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि हमको हम छूटना है यहां से। यद्यपि ऐसा लगता है कि यह विचार और यह जाप अब भी अभी भी तथा रूप नहीं है, जैसा होना चाहिए ऐसा हमको नहीं है, संतोष नहीं है इस बात का। छूटने का विचार है और इसका जाप चलता है, फिर भी हमको इसका संतोष नहीं है। देखो ये सम्यक दशा का संकेत है इसमें, वरना क्या हो जाता कि चलो हमको तो छूटने का ही विचार आता है, अरे हमको तो इसका जाप चलता है, इसकी गिनती करेगा तो कि नहीं, हम इसमें संतोष कभी पकड़ने वाले नहीं है। विचार होना अच्छी बात है, छूटने का विचार आना अच्छी बात है, छूटने का सतत जाप चलना वो भी अच्छी बात है, लेकिन उसमें संतुष्ट होना वो अच्छी बात नहीं है। तो गुण के साथ मिथ्यात्व दशा में अवगुण साथ में चला आता है और पता नहीं चलता है, जबकि सम्यक दशा में गुण के साथ अवगुण का एंट्री नहीं हो सकता है। ये सम्यक्त्व का प्रभाव है। सम्यक मार्ग किसको कहते हैं कि चारों पड़खों से जो निर्दोष हो उसी को सम्यक मार्ग कहते हैं। इस विषय में थोड़ा और विशेष रूप से स्पष्टीकरण करें तो धर्म के जो संप्रदाय हैं जिसमें धर्म ग्रंथ और तत्वज्ञान फिलॉसफी थोड़ी बहुत सब में तो है ही, तो सभी संप्रदाय में गुण का आदर किया है और अवगुण का अनादर किया है। कोई धर्म संप्रदाय में अवगुण का आदर करके गुण का अनादर किया है ऐसी बात नहीं है। ये सामान्य बुद्धि से सबको ये मालूम पड़ता है, सभी संप्रदाय बुद्धि वाले संप्रदाय वाले को कि अवगुण नहीं होना और गुण होना, लेकिन गुण ग्रहण करने की कार्य पद्धति है, गुण प्राप्त करने की कार्य पद्धति सम्यक पद्धति है, जैन दर्शन के अलावा कहीं नहीं है। इसलिए दूसरे संप्रदाय में जो भी कार्य पद्धति है उसमें गुण के साथ अवगुण का प्रवेश हो जाता है और खुद को पता नहीं चलता है। जैसे कि त्याग करना अच्छा है तो अन्य दर्शन में भी आपको त्यागी मिलेंगे, अपने अपने संप्रदाय के त्यागी होते हैं, लेकिन मैंने त्याग किया ऐसा अहम भाव सम्यक्त्व के बिना मिटना नहीं उत्पन्न होना वो असंभव है, बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता कि जीव अनादि से पर्याय दृष्टि है, तो जिस पर्याय में वो प्रवेश करेगा वहां अहम भाव किए बिना रहेगा नहीं। जैसे शास्त्र पढ़ते पढ़ते ज्ञान बढ़ता है, सूक्ष्म बढ़ता है, तो एक सूक्ष्म का अहम भाव आ जाता है अगर द्रव्य दृष्टि नहीं उत्पन्न हुई तो। द्रव्य दृष्टि वाले को किसी भी पर्याय में अहम भाव नहीं होता, क्योंकि पर्याय बुद्धि उसकी छूट गई है, तो उसको कहीं भी अवगुण की प्राप्ति नहीं होगी, अकेले गुण की ही प्राप्ति होगी। सर्वांग गुण है वो सर्वांग शुद्ध होगा, जबकि दूसरे को गुण देखेगा लेकिन सर्वांग शुद्ध नहीं होगा, ये बात हो जाएगी। तो जैन दर्शन की साधना में और अन्य दर्शन की साधना में कार्य पद्धति का फर्क होने से ये बात बनती है। 157 तो डायरी है कृपालु देव की, आसनोंद है उसका पहला पेज। नाना प्रकार का मोह पतला होने से आत्मा की दृष्टि अपने गुण से उत्पन्न होने वाले सुख में जाती है और पीछे यह प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, और यही दृष्टि उनको सिद्धि देती है। तो वो तो एक दर्शन मोह की मंदता होने से आत्मा की दृष्टि में अवगुण से उत्पन्न होने वाले सुख पर नहीं रहती, गुण से मुझे सुख उत्पन्न होना चाहिए इस प्रकार से, क्योंकि सांसारिक सुख है वो अवगुण पूर्वक अनुभव में आता है। जितने भी सांसारिक सुख की अनुभव दशा है उसमें पाप रूप अवगुण साथ में रहता है, तो जिसका दर्शन वो मंद हुआ उनको गुण से उत्पन्न होने वाला सुख चाहिए, ये कहने का अभिप्राय है। हमारा जो विषय चल रहा था वो थोड़ा अलग है इस बात से, उसी पॉइंट वो बात इधर नहीं है। बात वो है कि जैसे कोई कहता है कि भाई क्रोध तो अवगुण है, और अवगुण के सामने, इस क्रोध के अवगुण के सामने क्षमा है वो गुण है, तो क्षमा रखें, और क्षमा रखते वक्त अवगुण नहीं हो कि मैंने क्षमा रखी, ऐसा अवगुण नहीं हो, वो कैसे हो सकता है, वो कैसे होगा? उसमें क्या होगा कि पर्याय में अहम भाव ही छूट गया जिसका, तो सहज ही जो परिणाम हो गया सो हो गया। मैं उस परिणाम में अहम करूं तो अहम भाव आएगा ना, बहुत सूक्ष्मता से विचार करने योग्य विषय। कोई भी कार्य करे लौकिक सद्गुण का, उसका अहम भाव पर्याय दृष्टि में आएगा आएगा और आएगा, और लोग उनको गुण मानेंगे। जैसे कोई उदार है, उदारता से दान देता है, लोग तो बहुत प्रशंसा करेगा, लेकिन इसमें अहमपणा नहीं आने के लिए साधन कौन है? द्रव दृष्टि के बिना ये संभव नहीं है, ये संभव ही नहीं है। पर्याय दृष्टि में हो ही जाता है, ऐसा अनिवार्य रूप से होता है, इसका क्या करेंगे, वो बात है, अनिवार्य रूप से हो जाता है, तो इसका क्या मतलब उपाय है? कि कोई उपाय नहीं है सिवा द्रव दृष्टि कर लेना। इसलिए प्रथम ही द्रव्य दृष्टि कैसे हो, इस प्रकार की पूरी व्यवस्था उपदेश पद्धति में जैन दर्शन में है, यही कारण है इसके पीछे। तो ये कहां से निकला, ये बात कहां से निकला कि व्यवसाय से छूटने का विचार और ये सतत विचार को जाप कहा। तो बात तो अच्छी है, लेकिन लिखते हैं कि हमको इसमें संतोष होता नहीं है, हमको तो असंतोष होता है, संतोष तो नहीं है किंतु असंतोष है हमको, इसलिए उसमें अहम भाव आने की कोई अवकाश नहीं है। क्या लगता है? शिथिल लगता है, बलवान होते हुए भी वो शिथिल दिखते हैं उनको, इसलिए अत्यंत विचार और अत्यंत जाप को उग्र रूप से आराधन करने का अल्पकाल में योग करना चाहिए, ऐसा वर्तता रहता है। बहुत बात उतनी लिखी है, गुड बात लिखी है कि ऐसा विचार शिथिल है, इसलिए अत्यंत विचार और अत्यंत जाप उग्र रूप से, उसकी डिग्री तीव्र हो जानी चाहिए। पहली बात तो वो है कि उसकी डिग्री जो है वो एकदम तीव्र हो जानी चाहिए, चरम सीमा को प्राप्त हो जानी चाहिए, और उसको परिणमन का आराधन कहते हैं। विचार को विचार की कोटि में नहीं रखना है, विचार को आराधन के स्टेज में ले जाना है। विचार है वो एक विचार है, वो स्टेज ऑफ एग्जीक्यूशन नहीं है, एग्जीक्यूटिव स्टेज में आना चाहिए, उसको आराधन कहते हैं, विचार में रहने की बात नहीं। तो कोई भी विचार तीव्र हो जाता है, अत्यंत तीव्र हो जाता है, तो उसका परिणमन चालू होता है, स्टेज बदल जाता है, विचार का स्टेज आगे बढ़ करके परिणमन में चालू हो जाता है। ऐसा योग, योग मैंने ऐसी सहज योग्यता अल्पकाल में ही होनी चाहिए हमारी, ऐसा हमको वर्तता रहता है। कैसी योग्यता अल्पकाल में हमारी हो जानी चाहिए, अत्यंत उग्र विचार आकर के उसका आराधन चालू हो जाए और ऐसा समय आ जाए कि वो सहज रूप से ऐसा ही चलता रहे। ऐसा वर्तता है मैंने, ऐसा हमारा अभिप्राय होने से ये बात चालू रहती है। प्रसंग से मैंने कुछ पत्र लिखने के प्रसंग से कितने एक अरस परस संबंध जैसे वचन, मैंने एक दूसरे के पूरक वचन इस पत्र में लिखे हैं। यह विचार में स्फूर्णा आने से क्या, विचार में स्फूर्णा आने से, प्लानिंग नहीं किया था हमने कि आपको पत्र लिखना है, कुछ प्लान बना करके लिखे पॉइंट वाइज, ऐसा नहीं है। आजकल क्या होता है कि जो पुस्तक लिखते हैं तो उसके प्लानिंग कर लेता है कि उसमें क्या क्या लिखना है, जो लेक्चर देते हैं वो इसका प्लानिंग कर लेते हैं कि लेक्चर में क्या क्या बोलना पॉइंट वाइज, ज्ञानी ऐसी तैयारी करते हैं नहीं है। उनको तो इनकी ज्ञान धारा के साथ साथ जो विकल्प धारा है उसमें सहज आया सो बोल दिया और सहज आया सो लिख दिया, इसका सबूत भी है इधर पत्रांक 449, इसका सबूत है। देखिए, पृष्ठ संख्या है 373 में, आज यह आठवां पत्ता मैंने पोस्ट कार्ड लिखते हैं। ये पूरा पत्र है ना, वो एक लिफाफा में नहीं लिखा गया, आठ पोस्ट कार्ड का एक पत्र है। तो जिस मुमुक्षु को पत्र लिखने को बैठे तो एक पोस्ट कार्ड उठाया, कोई प्लानिंग नहीं था, पोस्ट कार्ड पूरा हुआ और विकल्प का उदय चालू रहा, दूसरा लिख दिया, फिर विकल्प का उदय चालू रहा, तीसरा लिख दिया, लिखते लिखते आठ पोस्ट कार्ड लिखे। अगर प्लानिंग किया होता तो पोस्ट कार्ड हाथ में नहीं लेते, लिफाफा लेते। तो लिखते हैं क्या कि चित्त ऐसा उदय वाला कभी वर्तता है, ऐसा उदय चित्त में वर्त जाता है, हम प्लानिंग नहीं करते हैं, उदय भाव चालू रहा रह गया, लिखते लिखते उदय भाव टूट गया, लिखना बंद कर देंगे, अधूरा पत्र छोड़ देंगे, और चालू रहा तो दूसरा लिखेंगे, और चालू रहा तो आठवां लिख दिया। आज ऐसा अनुक्रम से उदय होने से उदय के अनुसार लिखा है, तो सहज उदय में आया विकल्प तो लिख दिया, तो लिख दिया। तो दूसरा लिखने के बाद तीसरे का प्लानिंग नहीं था, तीसरा लिखने के बाद चौथा का प्लानिंग नहीं था, पहले से तो आठ का प्लानिंग नहीं था, लेकिन एक के पीछे दूसरे का प्लानिंग नहीं था। ये विकल्प की ज्ञान दशा में कितनी सहजता होती है, ये सहजता का दर्शन होता है इस पत्र में, ये सहजता क्या चीज होती है। वैसे विचार में स्फुरण होने से, लिखते लिखते विचार का स्फुरण आता है, स्वविचार बढ़ने के लिए हमारा विचार बल बढ़ जाए इसलिए, और तुमको पढ़ने के और विचार करने के लिए लिखा है, अकेले तुमको विचार करने के पढ़ने के लिए नहीं लिखा है, हमको हमारा विचार बल बढ़ने के लिए भी हमने, हमको स्फुरण आई और हमने लिख दिया। जीव प्रदेश पर्याय तथा संख्यात असंख्यात अनंत आदि विषय में तथा रस के व्यापकपणा के विषय में क्रमशः समझना योग्य होगा। तो ऐसे कुछ प्रश्न और भी लिखे हैं, जीव के विषय में, प्रदेश के विषय में, पर्याय के विषय में, संख्यात असंख्यार्थ और अनंत के विषय में, और रस का व्यापकपणा के विषय में। उत्तर नहीं दिया क्रमशः, मैंने जब जब योग लगेंगे तब वो बात हम आपको समझाएंगे। आपने पूछा इसलिए उत्तर देना वो कोई जरूरी नहीं है, उत्तर देना जरूरी लगेंगे तब देंगे, ऐसी बात है। देखो क्या ट्रीटमेंट है कि सुभाग भाई को लिखते हैं पत्र, तो सुभाग भाई को लिखा है क्योंकि वो क्रमशः आपको समझना योग्य लगता है। एक साथ ये सब बात आपको समझ कर लेना वो हमको योग्य नहीं लगता है। आजकल तो हमको जो भी ग्रंथ हाथ में आओ पढ़ लो, पढ़ डालो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कृपालु देव के जमाने में तो बहुत अच्छी बात थी, कोई भी कृपालु देव के मुमुक्षु कृपालु देव की आज्ञा बिना ग्रंथ नहीं पढ़ते थे। अब हमको ये ग्रंथ आपकी आज्ञा हो तो पढ़ना है, या तो आप आज्ञा देंगे वही हम पढ़ेंगे, दूसरा नहीं पढ़ेंगे। आत्मसिद्धि भेजी तो भी रिस्ट्रिक्शन रखा, आप पढ़ेंगे दूसरे नहीं पढ़ेंगे, अगर आपको दूसरों को पढ़ना है तो आपकी उपस्थिति में पढ़ेंगे, अकेले नहीं पढ़ेंगे, कितनी शर्त। यही कारण से कि पढ़ने में जो नुकसान होता है वो ज्ञानी को मालूम पड़ता है, वो बचा लेते हैं उसमें से। तुम्हारा यहाँ आने का विचार है तथा श्री डूंगर का आने का संभव है ऐसा लिखा है, वो जाना है। सत्संग योग की इच्छा रहा करती है, हमको भी सत्संग का योग रहे ऐसी इच्छा रहा करती है, मतलब ठीक है आना है तो आ सकते हो, ऐसा करके पत्र यहाँ समाप्त होता है। समझिए।